नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग सलाहकार अल रीज और लॉरा रीज की ब्रांड रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा को केवल पहचान योग्य नाम नहीं, बल्कि ग्राहक के मन में स्पष्ट अर्थ रखने वाला ब्रांड बनाना समझाना है। पुस्तक का तर्क है कि अत्यधिक विकल्पों वाले बाजार में ब्रांड की शक्ति उसके फैलाव में नहीं, उसके फोकस में होती है। लेखक 22 संक्षिप्त सिद्धांतों के माध्यम से बताते हैं कि ब्रांड को एक अलग श्रेणी, एक सरल विचार और एक सुसंगत पहचान से जोड़ना क्यों आवश्यक है। रोलेक्स, वोल्वो, हाइनेकेन, कोका कोला, जेरोक्स, BMW, फेडरल एक्सप्रेस और स्टारबक्स जैसे परिचित उदाहरणों से वे अपने विचार स्पष्ट करते हैं। यह पुस्तक अकादमिक शोध ग्रंथ से अधिक एक व्यावहारिक रणनीतिक मार्गदर्शिका है। इसकी भाषा जानबूझकर सीधी है और इसके नियम याद रखने योग्य सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि इसके कुछ उदाहरण पुराने लग सकते हैं, फिर भी ब्रांड की स्थिति, अलग पहचान और विस्तार के जोखिम पर इसकी मूल चर्चा आज भी उपयोगी आधार देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ब्रांड की मजबूती का आधार संकीर्ण फोकस है। पुस्तक का सबसे केंद्रीय और अपेक्षाकृत प्रतिकूल लगने वाला विचार संकुचन का नियम है। रीस और रीस के अनुसार, ब्रांड तब मजबूत होता है जब वह अपने अर्थ और पेशकश को सीमित करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कंपनी कभी विकास न करे, बल्कि यह कि ग्राहक के मन में ब्रांड का उत्तर एक साफ, त्वरित और विशिष्ट विचार होना चाहिए। जब एक नाम बहुत अलग प्रकार के उत्पादों, कीमतों या उपयोगों से जुड़ जाता है, तो ग्राहक के लिए उसका मुख्य अर्थ धुंधला हो सकता है। लेखक विस्तार के नियम के जरिए इसी खतरे को समझाते हैं, यानी उत्पादों की पंक्तियां बढ़ाने से अल्पकाल में बिक्री बढ़ सकती है, पर दीर्घकाल में नाम की विशिष्टता घट सकती है। शेवरले का उदाहरण इसी तर्क से जोड़ा जाता है, जहां अत्यधिक विविध मॉडलों के कारण एक स्पष्ट छवि बनाना कठिन बताया गया है। दूसरी ओर, वॉलमार्ट का व्यापक वर्गीकरण होने पर भी कम कीमत का एकीकृत वादा उसकी पहचान को संभालता है। इसलिए पुस्तक उत्पादों की संख्या और ब्रांड के विचार में अंतर करती है। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि हर नए उत्पाद, फीचर या बाजार से पहले संस्था को पूछना चाहिए कि क्या इससे उसका मूल अर्थ अधिक स्पष्ट होगा या केवल नाम पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरा, ग्राहक के मन में एक शब्द का स्वामित्व ब्रांड पोजीशनिंग की कसौटी है। शब्द का नियम कहता है कि प्रभावशाली ब्रांड ग्राहक के मन में किसी एक शब्द या छोटे विचार से जुड़ने का प्रयास करता है। यह शब्द हमेशा किसी उत्पाद विशेषता तक सीमित नहीं होता, वह गुणवत्ता, मूल्य, सुरक्षा, गति, प्रतिष्ठा या किसी श्रेणी की सरल मानसिक पहचान भी हो सकता है। पुस्तक के उदाहरणों में वोल्वो को सुरक्षा और फेडरल एक्सप्रेस को त्वरित डिलीवरी जैसी धारणाओं से जोड़ा जाता है। इस सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि ग्राहक हर विकल्प का विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन नहीं करता, वह निर्णय लेने के लिए मानसिक शॉर्टकट बनाता है। यदि ब्रांड उस शॉर्टकट में स्थिर स्थान ले ले, तो उसे याद रखना और प्रतिस्पर्धियों से अलग करना आसान होता है। लेकिन किसी शब्द का दावा केवल विज्ञापन की पंक्ति लिख देने से सफल नहीं होता। उत्पाद अनुभव, कीमत, वितरण, संचार और दृश्य पहचान को उसी वादे के अनुरूप होना पड़ता है। साथ ही शब्द सामान्य और अस्पष्ट होने के बजाय ऐसा होना चाहिए जो प्रतिस्पर्धी विकल्पों से वास्तविक अंतर बताए। लेखक का जोर बाहरी वास्तविकता से अधिक बाजार की धारणा पर है। इसका मतलब धोखा देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि ग्राहक की स्मृति में कौन सा सरल अर्थ लगातार पुष्ट हो रहा है। आधुनिक ब्रांडों के लिए भी यह एक उपयोगी परीक्षण है कि उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में कौन सा विचार आता है और क्या वह विचार इच्छित रणनीति से मेल खाता है। तीसरा, श्रेणी नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धियों से पहले नई श्रेणी बनाना अधिक प्रभावी है। रीस और रीस ब्रांडिंग को केवल प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर होने की प्रतिस्पर्धा नहीं मानते, वे नई श्रेणी बनाने और उसमें अग्रणी बनने को अधिक प्रभावशाली रणनीति मानते हैं। इसके पीछे तर्क है कि ग्राहक अक्सर किसी श्रेणी में पहले याद आने वाले नाम को संदर्भ बिंदु मान लेता है, इसलिए स्थापित नेता की नकल करके उसी जगह जीतने की कोशिश महंगी और कठिन हो सकती है। बेहतर मार्ग यह हो सकता है कि संस्था अपनी पेशकश को अलग ढंग से परिभाषित करे, ताकि वह एक नई समझने योग्य श्रेणी की पहली पहचान बन सके। पुस्तक का फेलोशिप नियम इस विचार को आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि नई श्रेणी को विश्वसनीय और महत्वपूर्ण बनाने के लिए अन्य ब्रांडों का प्रवेश भी उपयोगी हो सकता है। अकेला नाम कभी कभी बाजार को बहुत छोटा या संदिग्ध दिखा सकता है, जबकि कई विकल्प श्रेणी की मांग को वैध बनाते हैं। तब भी नेतृत्व का लाभ पहले और सबसे स्पष्ट नाम को मिल सकता है। यह दृष्टि हर छोटे अंतर को नई श्रेणी घोषित करने की सलाह नहीं देती। श्रेणी ग्राहक के लिए उपयोगी, सहज और पर्याप्त अलग होनी चाहिए। व्यावहारिक रूप से उद्यमी को यह देखना चाहिए कि ग्राहक किस समस्या को अभी उपलब्ध विकल्पों से अलग समझता है, फिर नाम, संदेश और उत्पाद अनुभव के जरिए उस अंतर को लगातार स्थापित करना चाहिए। चौथा, नाम, दृश्य पहचान और प्रचार को ब्रांड के दीर्घकालिक अर्थ से मेल खाना चाहिए। पुस्तक ब्रांड को केवल लोगो, रंग या विज्ञापन अभियान नहीं मानती। ये सभी संकेत तब मूल्यवान बनते हैं जब वे एक स्थिर मानसिक अर्थ को मजबूत करें। नाम का नियम विशेष रूप से बताता है कि नाम छोटा, अलग और श्रेणी के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि वही ग्राहक के मन में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। लेखक ब्रांड की दृश्य पहचान और सार्वजनिकता पर भी ध्यान देते हैं। एक प्रभावी दृश्य संकेत जैसे विशिष्ट रंग, आकार या प्रतीक स्मरण को आसान बना सकता है, पर वह मूल पोजिशनिंग का विकल्प नहीं है। इसी प्रकार प्रचार का उद्देश्य हर बार नया दावा गढ़ना नहीं, बल्कि उस केंद्रीय विचार को विश्वसनीयता देना होना चाहिए जिसे ब्रांड अपनाना चाहता है। रोलेक्स जैसे उदाहरण प्रतिष्ठा और विशिष्टता के साथ ब्रांड नाम के जुड़ाव को समझाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रांड की भाषा और व्यवहार में विरोधाभास न हो। यदि कोई नाम प्रीमियम होने का संकेत देता है, लेकिन उसका मूल्य, वितरण या प्रचार लगातार सस्तेपन पर केंद्रित रहे, तो ग्राहक को मिश्रित संदेश मिलता है। पुस्तक के अनुसार ब्रांड निर्माण में निरंतरता आकर्षक नवीनता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। आज के डिजिटल माध्यमों में भी यही बात लागू होती है। वेबसाइट, पैकेजिंग, ग्राहक सेवा, सामाजिक मंच और उत्पाद अनुभव अलग अलग आवाजों में न बोले, उन्हें एक ही स्पष्ट वादे को दोहराना और प्रमाणित करना चाहिए। अंत में ब्रांड विस्तार, वैश्विक पहुंच और समय के साथ स्थिरता के बीच संतुलन जरूरी है। पुस्तक ब्रांड विस्तार को सबसे सामान्य रणनीतिक जोखिमों में गिनती है। जब सफल नाम के नीचे नई श्रेणियां जोड़ दी जाती हैं, तो कंपनी को मौजूदा पहचान का लाभ मिलता हुआ दिखता है। फिर भी लेखक चेतावनी देते हैं कि एक ही नाम का बहुत अलग उत्पादों पर उपयोग उसकी मूल स्थिति को कमजोर कर सकता है। उनका समाधान अक्सर नए अवसर के लिए अलग ब्रांड बनाने की दिशा में जाता है, ताकि पुराना नाम अपने स्थापित अर्थ को बचाए रखे। यह सलाह विशेष रूप से तब प्रासंगिक है जब नया उत्पाद अलग ग्राहक, अलग मूल्य स्तर या अलग उपयोग के लिए हो। पुस्तक वैश्विक ब्रांडिंग और समय के नियमों की ओर भी संकेत करती है। अंतरराष्ट्रीय विस्तार में ऐसा नाम और विचार अधिक टिकाऊ हो सकता है जो भाषा, संस्कृति और बाजारों में सरलता से समझा जाए। पर वैश्विक होना केवल हर जगह उपलब्ध होना नहीं है। ब्रांड को प्रत्येक बाजार में अपने केंद्रीय अर्थ की रक्षा करनी होती है। समय का नियम तत्काल बिक्री और दीर्घकालिक ब्रांड इक्विटी के अंतर को रेखांकित करता है। विस्तार छूट या बार बार संदेश बदलना जल्दी परिणाम दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत पहचान की कमजोरी हो सकती है। यह दृष्टि कठोर लग सकती है, क्योंकि वास्तविक कंपनियों को बदलते बाजारों में अनुकूलन भी करना पड़ता है। फिर भी पुस्तक उपयोगी अनुशासन देती है। बदलाव करें, लेकिन पहले तय करें कि कौन सा ब्रांड अर्थ अपरिवर्तनीय है और कौन सी चीजें उसके बिना बदली जा सकती हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उद्यमियों, छोटे व्यवसाय मालिकों, मार्केटिंग विद्यार्थियों, ब्रांड प्रबंधकों और उत्पाद रणनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। नए पाठक इससे ब्रांडिंग की मूल भाषा सीख सकते हैं, जबकि अनुभवी पेशेवर इसे अपनी वर्तमान रणनीति की जांच के लिए एक संक्षिप्त ढांचे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे व्यावहारिक लाभ यह है कि यह निर्णयों को कुछ कठिन प्रश्नों तक सीमित कर देती है। हमारा ब्रांड किस एक विचार के लिए जाना जाएगा? क्या नया उत्पाद उस विचार को मजबूत करता है या कमजोर? क्या हम एक मौजूदा श्रेणी में भीड़ बढ़ा रहे हैं या ग्राहक के लिए उपयोगी नई श्रेणी परिभाषित कर रहे हैं? और क्या नाम? अनुभव तथा संचार एक ही वादा निभा रहे हैं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग का अंतर इसकी अत्यधिक स्पष्ट नियम आधारित संरचना और फोकस पर अधिक जोर है। यह विस्तृत उपभोक्ता अनुसंधान, डिजाइन प्रक्रिया या डिजिटल अभियानों की तकनीकी पुस्तक नहीं है। इसके बजाय यह ब्रांड के मानसिक स्थान को रणनीति का केंद्र बनाती है। इसके नियमों को अक्षरशः और हर परिस्थिति में लागू करने के बजाय विचार उपकरण की तरह पढ़ना अधिक उचित है, क्योंकि बाजार, माध्यम और ग्राहक व्यवहार बदलते रहते हैं। कुछ उदाहरण अपने समय के हैं और आधुनिक बहु उत्पाद प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियों में इनके अपवाद मिल सकते हैं। फिर भी विस्तार के आकर्षण, अस्पष्ट संदेश और कमजोर भेदभाव के विरुद्ध इसकी चेतावनी प्रासंगिक रहती है। संक्षेप में, यह पुस्तक ब्रांडिंग की पूरी पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि स्पष्टता, श्रेणी और दीर्घकालिक पहचान पर केंद्रित प्रभावी प्रारंभिक मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ऑलरीज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।